वृद्धाएं, पृष्ठ संख्या 110। वृद्धावस्था अपने आप में एक असाध्य बीमारी है, परंतु आमतौर पर यह देखा गया है कि वृद्ध पुरुषों की तुलना में वह वृद्ध स्त्रियों की यंत्रणाएं कम होती हैं। स्त्री प्रौढ़ावस्था तक में पीड़ा और यात्राओं की विभीषिका से गुजर चुकी होती है और उम्र के इस दौर में लोगों की संवेदना और सहानुभूति प्रायः उनके साथ हो जाती है। तथापि किन्हीं कारणों से जो संतान रह गई हैं या संतान होते हुए भी जिनकी संतानें उन्हें अकेले तड़पता छोड़ गई हैं, उनके सामने तो अकेलेपन की अंधेरी अंतहीन सुरंगों के सिवा कुछ नहीं है। आलोच्य उपन्यास में सांप और सीढ़ी की धान माँ, धरती धन्ना अपना की प्रतापी चाची, आधा गांव की जंगतिया बो, एक मुठ सरसों की पुर्थुली आमा, चौथी मुट्ठी की कौंसिला, दो सखिया की सखुबाई आनंदी, सूरज के आने तक की शत्रुपा बुआ, नच्यो बहुत गोपाल की मोहना की मामी, एदम नमामा की बहू, जिंदगी नामा की हकीमा बीवी आदि वृद्धाओं को परिगणित कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। सांप और सीढ़ी की धान माँ, एक मुठ सरसों की पुर्थुली आमा, नच्यो बहुत गोपाल की मोहना की मामी आदि वृद्धाएं जीवन के संघर्षपूर्ण मोड़ों से गुजर चुकी हैं और अब जीवन की इस अवस्था में कुछ थिराने लगी हैं। धान माँ जहाँ दुकान और होटलों के धंधे में तथा पुर्थली आमा खेती की पोथी देव की परवरिश में अपनी वृद्धावस्था के अकेलेपन को विस्मित करने का प्रयत्न करती हैं। पृष्ठ संख्या 111। सतरूपा बुआ का बुढ़ापा शांत संपन्न एवं सामान्य है। प्रतापी चाची वृद्धावस्था में भी मेहनत मजदूरी करते हुए दम तोड़ देती है। सखुबाई और आनंदी ऐसी वृद्धाएं हैं जो आर्थिक दृष्टियों से तो आत्मनिर्भर हैं, परंतु अंतरंग स्नेहियाओं ने उन्हें त्याग दिया है, अतः अकेलेपन के बोझ को ढोने के लिए वे वृद्धाश्रम का आश्रय ग्रहण करती हैं। इदम नमम की बहू ने यौवनावस्था से ही विधवापन के नर्क को ढोया है। वृद्धावस्था कुछ ढंग से गुजरती, परंतु जवान जोध पुत्र की हत्या हो जाती है। पुत्रवधु प्रेमा दूसरे के घर जा बैठती है और पोती मंदा को दुश्मनों के आतंक से दूर रखने के लिए उसे वृद्धावस्था में दर दर भटकना पड़ रहा है। आधा गांव की जंगतिया वो जैसे बुढ़ियाओं की समस्या यह है कि जिनके सहारे बुढ़ापे की रात को काटा जा सकता था, वे उनके जिगर के टुकड़े पाकिस्तान में जा बसे हैं। अंततः निष्पत्ति स्वरूप कहा जा सकता है कि आलोच्य उपन्यासों में पाई जाने वाली वृद्धाओं को शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणाओं से तो गुजरना पड़ता है, परंतु सामाजिक या आर्थिक विडंबनाएं यहाँ अपेक्षाकृत कम ही मिलती हैं। दूसरा, जातिगत आधार पर, पृष्ठ संख्या 111। आलोच्य ग्राम भित्तीय आधुनिक उपन्यासों में आगत नारी जगत के विभिन्न रूपों एवं छवियों को जातिगत आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ एक तथ्य ध्यातव्य रहे कि नारी चाहे किसी भी जाति की हो, उसे नारी होने की कीमत शोषण के रूप में चुकानी ही पड़ती है। तथाकथित उच्च जातियों में जहाँ एक अवस्था के उपरांत नारी की भौतिकता की दृष्टि से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, खाने पीने और ओढ़ने पहनने की कोई किल्लत नहीं होती, वहाँ उनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद भी नहीं होता। यहाँ बंगला उपन्यासकार विमल मित्र के उपन्यास साहेब बीबी गुलाम की नायिका नई बहू का एक प्रसंग स्मृति में कौंध जाता है। वह जब अपने अय्यास पति से फरियाद करती है और अधिकार रूप में प्यार की मांग करती है, तब उसका पति जो एक विलासी जमींदार है कहता है कि तुम भी वही करो जो इस हवेली की दूसरी बहुएं करती हैं, मसलन गहने बनवाओ तोड़वाओ। इन उच्च वर्गीय महिलाओं की स्थिति कठपुतली सी होती है। वे सम्मानित एवं सुरक्षित तब तक रहती हैं जब तक वे पुरुष द्वारा रचे उस समाज के कायदे कानूनों और मर्यादाओं में उनकी शर्तों के अनुसार रहती हैं। जहाँ किसी ने अपनी अलग टुकड़ी बनाई, उसे निकाल बाहर किया जाता है। निम्न जाति की स्त्रियों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, एक तो दरिद्रता के मोर्चे पर और दूसरे जातीय शोषण के मोर्चे पर। प्रायः यह देखा गया है कि निम्न जाति में स्त्रियां उत्पादक कार्यों में भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, अतः यहाँ उनकी वह कठपुतली वाली स्थिति नहीं होती। परंतु आर्थिक विपन्नता से उत्पन्न स्थितियों में उसे कई बार उच्च वर्गीय लोगों की वासना का शिकार होना पड़ता है। यहाँ निम्न जातीय स्त्रियों की स्थिति बहुत कुछ अफ्रो एशियाई देशों की अश्वेत स्त्रियों जैसी है, जिनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, नारित्व का और पिछड़ेपन का। अश्वेत लेखिका एलिस वॉकर ने अपने उपन्यास में इसका यथार्थ आकलन किया है। सुश्री शिल्पा देसाई इस संदर्भ में लिखती हैं, वॉकर कॉल द ब्लैक वुमन हु कैरी द डबल बर्डन ऑफ रेसिज्म एंड सेक्सिज्म आर नॉट स्टिल एबल टू शेक ऑफ देयर बर्डन कंप्लीटली। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ द ब्लैक वुमेन्स जर्नी इन एलिस वर्क्स नॉवल अ प्रोफाइल बाय शिल्पा देसाई पृष्ठ संख्या 59 पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 112। परंतु एलिस ने यह भी संकेतित किया है कि लाख यंत्रणाओं और संघर्षों के बावजूद इन स्त्रियों में एक जीवट और जुझारूपन मिलता है जिसका उच्च जाति की स्त्रियों में अभाव सा लक्षित होता है। एलिस इसे ही वुमेनिज्म कहती हैं और ऐसा वुमेनिज्म हमें आलोच्य उपन्यासों की चनैया चमारिन, बदमी लवंगी, दर्पणी, ज्ञानो, पर्वतिया, चनूली, विजमा डोमिनी जैसी स्त्रियों में मिलता है। यह निम्न जाति की स्त्रियां जहां अनेकानेक समस्याओं से जूझ रही हैं, वहां दूसरी तरफ कई मामलों में यह स्त्रियां उच्च जाति की स्त्रियों के मुकाबले अधिक निर्द्वंद, निखालस, स्वतंत्र और अग्रगामी चिंतन से युक्त पाई जाती हैं। उच्च जाति की स्त्रियों में विधवा विवाह को लेकर जहां अपराध बोध मिलता है, वहां निम्न जाति की स्त्रियां इस अपराध बोध को ठुकरा कर उसे स्त्रीत्व की एक आवश्यकता के रूप में लेती हैं। इदम न मम की प्रेमा इसका उदाहरण है। सूखता हुआ तालाब की चनैया अपने विवाह पूर्व के गर्व को नहीं गिराती, जबकि इसकी उपन्यास में उच्च जाति के अनेक कन्याओं में इस प्रवृत्ति को लक्षित किया जा सकता है। जल टूटता हुआ के सगुन मास्टर की समस्या यह है कि पत्नी और युवा बेटी को छोड़कर वे कहीं दूर दूसरे गांव में नौकरी नहीं करने जा सकते। इसके स्थान पर यदि निम्न जाति की स्त्रियां होती तो वे अपने पति या पिता को बाहर जाने की छूट दे देती। विवाहेतर संबंधों की स्वीकृति के संबंध में भी निम्न जाति की स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक साहसी हैं। ऐसा नहीं है कि उच्च जाति की स्त्रियों में इस प्रकार के संबंध नहीं होते, परंतु वहां सब गोपनीयता और आड़ और ओट में होता है और यहाँ प्रकट रूप में। आलोच्य उपन्यास में चमार, हरिजन, भंगी, डोम, जाट, अहीर, आदिवासी आदि निम्न जाति की स्त्रियां मिलती हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण, ठाकुर, सेठ, साहूकार जाति की स्त्रियों के चित्रण मिलते हैं। परंतु जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, समग्रता देखने पर निम्न जाति की नारियों में व्यक्तित्व की पहचान अधिक पाई जाती है, जिन्हें एलिस, ऑट्राजियस, ऑडासियस, करेजियस एंड विलफुल मानती हैं। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 55। वर्गगत आधार पर पृष्ठ संख्या 112। समाज की विभिन्न श्रेणियों में उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग आते हैं। इन वर्गों का आधार आर्थिक संपन्नता या विपन्नता है, जिससे अलग अलग वर्ग बनते हैं। आलोच्य उपन्यासों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं मिलती हैं, उनमें उच्च वर्ग की महिलाएं बहुत कम मिलती हैं। प्रायः उनका समावेश भी मुख्य पात्रों में न होकर गौण पात्रों में होता है। कहीं कहीं तो उनके नाम तक नहीं दिए गए हैं। उनकी पहचान किसी की पत्नी, किसी की माँ, दादी या नानी के रूप में मिलते हैं। जल टूटता हुआ के महिपाल सिंह की पत्नी, राग दरबारी के वैद्य जी तथा गयादीन की पत्नी, धरती धन्ना अपना में चौधरी हरनाम सिंह की पत्नी, मकान दर मकान की रानी सा, अलग अलग वैतरणी की पर्वतिया पतनहिया भाभी इमरतिया उपन्यास की लक्ष्मी नग स्टेट की महारानी जैसे नारी पात्र उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, परंतु इन चरित्रों की कोई विशेष पहचान नहीं बनती। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 113। उच्च मध्यम वर्ग तथा मध्य वर्ग की महिलाओं में पार्वती, जमुना, शारदा, जल टूटता हुआ से, सूखता हुआ तालाब की लीला कलावती, सूरज के आने तक की राधा, इदम नमम की प्रेमा, कुसुमा भाभी, मंदा, आधा गांव की सईदा, हॉलदार की खिमली भिमली, चौथी मुट्ठी की लक्ष्मा, 14 फेरे की सुब्रता ताई, सांप और सीढ़ी की धान माँ, एक मूठ सरसों की पुरथुली आमा जैसी महिलाएं इस वर्ग के अंतर्गत आई हैं। इस वर्ग की महिलाओं में व्यक्तित्व की कुछ पहचान मिलती है। कहीं कहीं उनकी अपनी घर गृहस्थी में उनके चलन को भी लक्षित किया जा सकता है। धान माँ तथा पुरथुली आमा जैसी महिलाओं के चरित्र प्रभावशाली एवं जाज्वल्यमान प्रकार के बन पड़े हैं। इदम नमम की मंदा तथा कुसुमा भाभी, उग्रतारा में नर्मदेश्वर की भाभी, उकाओ की श्यामा जैसे नारी पात्र इस वर्ग में सविशेष ध्यान खींचते हैं। पैराग्राफ चेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी का काम करने वाली नारियां निम्न वर्ग के अंतर्गत आती हैं। प्रायः उपन्यास में उनके जीवन संघर्ष को विस्तृत रूप से आलेखित किया गया है। इन अर्थों में ये नारी पात्र अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तित्व संपन्न प्रतीत होते हैं। उनके जीवन में संघर्ष और समस्याएं पाई जाती हैं और अपने अपने ढंग से वे इन समस्याओं से जूझती रहती हैं। पूर्ववर्ती पृष्ठों में इस वर्ग की नारियों का उल्लेख एकाधिक बार हुआ है, अतः यहाँ केवल कुछ तेजस्वी पात्रों का उल्लेख हम कर रहे हैं, जिनमें जल टूटता हुआ की चिनैया, एक टुकड़ा इतिहास की चनूली, बबूल की दर्पणी, धरती धन्ना अपना की ज्ञानो, नदी फिर बहचली की पर्वतिया, चौथी मुट्ठी की मोतीमा मस्तानी आदि मुख्य हैं। इन नारियों की संघर्ष लीला ही मानो उनकी जीवन लीला है। वे टूट जाती हैं परंतु झुकती नहीं हैं। एलिस वॉकर की अश्वेत नारियों में जिस प्रकार की संघर्षशीलता और वुमेनिज्म प्राप्त होता है, उसी प्रकार का नारीत्व का दर्प उक्त नारियों में भी मिलता है। पैराग्राफ चेंज, उक्त विवेचन के प्रकाश में रेखांकित किया जा सकता है कि जीवन संघर्ष का परिणाम तथाकथित उच्च वर्गीय स्त्रियों की अपेक्षा निम्न वर्गीय स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। राजेंद्र यादव के शब्दों में, जहां इस तथाकथित उच्च वर्ग की महिलाएं एक सिरे से परंपरावादी एवं लद्दड़ होती हैं, वहां निम्न वर्गीय स्त्रियों में संघर्ष जीजीविषा और जिंदगी की जद्दोजहद में दो चार होने की प्रवृत्ति लक्षित होती है। संदर्भ ग्रंथ, औरत होने की सजा, अरविंद जैन, भूमिका से। चौथा, धर्मगत आधार पर, पृष्ठ संख्या 113। धर्मगत आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्मावलंबी स्त्रियों का आलेखन हो सकता है, परंतु पारसी तथा ईसाई महिलाओं का चित्रण प्राय नगरीय परिवेशों के उपन्यासों में मिलता है। आलोच्य उपन्यासों में कोई ऐसी पारसी महिला का चित्रण नहीं मिलता जो पाठक का ध्यान आकर्षित करती हो। ईसाई धर्म की महिलाओं का चरित्र भी नगण्य सा है। पृष्ठ संख्या 114। केवल धरती धन्ना अपना उपन्यास में नंद सिंह पहले चमार से सिख बनता है और बाद में सिख से ईसाई। नंद सिंह की पत्नी जब ईसाई बन जाती है, तब अपनी पूर्वाश्रम की कुंठा के कारण उसमें प्रदर्शन प्रवृत्ति का जन्म होता है। वह जानबूझकर सभानता के साथ घर में चप्पलों का प्रयोग करती है। बात बात में वह ईसा मसीह और बाइबल की बात करती है। कहा भी गया है, नया मुल्ला 9 बार नमाज पढ़ता है। मुस्लिम स्त्रियों का चरित्र भी कुछ एक उपन्यासों में ही हुआ है। आधा गांव, काला जल जैसे उपन्यासों में जहां मुस्लिम समाज को चित्रित किया गया है, वहां तो मुस्लिम स्त्रियों का रेखांकन बहुतायत से हुआ है। काला जल की बी दारोगिन तथा आधा गांव की जंगतिया बो पाठकों की स्मृति में बरसों कौंध सकती हैं, परंतु अन्य उपन्यासों में कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी के उपन्यासों को छोड़कर अन्य लेखकों में मुस्लिम महिलाओं के पात्र कम दृष्टिगत होते हैं। यहाँ गुलसेर खान सानी द्वारा उठाया गया प्रश्न पुनः एक बार हमें व्यथित और हीन कर सकता है कि हमारी कथा साहित्य से मुस्लिम पात्र क्यों कट रहे हैं। प्रेमचंद और यशपाल में यह समाज इतना कटा हुआ नहीं दिखता था। कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा तथा भीष्म साहनी की तमस में ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का चित्रण है। जिंदगी नामा तथा तमस में मुस्लिम नारी पात्र मिल जाते हैं। जिंदगी नामा मित्रों मरजानी धरती धन्ना अपना कभी न छोड़े खेत जैसे उपन्यासों में सिख नारी पात्र मिलते हैं, परंतु पानीदार सिख महिलाएं तो जिंदगी नामा तथा मित्रों मरजानी में ही मिलती हैं। ग्राम भित्तीय उपन्यासों में तो 99% हिंदू महिलाओं का ही चित्रण है, परंतु ईसाई या मुस्लिम महिलाओं में जो धार्मिक आग्रह एवं रीति नीतियाँ मिलती हैं, वैसे धार्मिक आग्रह एवं रीति नीतियों का पालन हिंदू महिलाओं में केवल सवर्ण स्त्रियों में ही उपलब्ध होते हैं। निम्न जाति की महिलाओं में धर्म के नाम पर कई धार्मिक अंधविश्वास पाए जाते हैं। उनके दैनिक जीवन में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिससे कि उनको विशेषतः हिंदू कहा जाए। वस्तुतः निम्न जाति की स्त्रियों के सामने अस्तित्व एवं आजीविका का प्रश्न ही इतना प्रखर हो जाता है कि शेष बातें हाशिए में चली जाती हैं।